તારીખ 19/4/1987, પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 89, 90 અને 91 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 70.
विराज की भक्ति करते हैं, निर्ग्रंथ मुनि जंगलवासी महात्मा की अंतरंग दशा कैसी होती है, संभाव रूप धर्म कैसा होता है, कि जिनके शत्रु मित्र के विकल्प नहीं होते और प्रचुर वितराग दशा होने पर भी निर्मानता है, अपना पूर्ण स्वरूप के आगे वो अपनी दशा को पामर समझते हैं। आगे एक ऐसा बोल है कि मुनिराज भी अपना पूर्ण स्वरूप के साथ अपनी दशा का मिलान करते हैं, तो उसको ये लगता है कि मैं तो पामर हूँ। सामान्य संसारी जीवों से तो वे महान हैं, बहुत महान हैं, पंच परमेष्ठी पद में विराजमान हैं, फिर भी निर्मानता है। देह जाय पर माया होए न रोम में, देह जाय में देह छूटने का प्रसंग प्रतिकूलता का आ जाए, फिर भी देह बचाने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए तिलतुष मात्र माया का परिणाम जिसको नहीं होता है। माया मैंने गुप्त पाप तो माया, ऐसा सूत्र है, जो गुप्त रूप में पाप परिणाम होता है, जो दूसरे को पता नहीं चले, ऐसा व्यक्त नहीं होता है, कभी तो पता चल भी जाता है, ऐसा अव्यक्त रूप में वक्र परिणाम होता है, असरल परिणाम होता है, फिर भी मुनिराज को ऐसा परिणाम देह छूटने की परिस्थिति में भी नहीं होता। भले ही देह का नाश हो, भले ही देह का अभाव हो, फिर भी इसके बचाने के लिए सीधी तो चेष्टा नहीं करे, डायरेक्ट परिणाम नहीं करे, इनडायरेक्ट मायाचार से भी ऐसा कोई करना कराना या करने वाले को ठीक जानना, ऐसा वक्रतारूप परिणाम, असरल परिणाम। रोम में मैंने तनिक भी नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता, जरा भी नहीं होता, ऐसा परिणाम होता। ऐसा देह पर जिसका ममत्व छूट गया है, का मतलब क्या है कि देह पर जिसका ममत्व छूट गया है, जैसे शत्रु मित्र में समानता है, वैसे ही जीवन मरण में भी समानता है, ऐसा कहना है। जीवन मरण दोनों समान है, जीवित के मरणे नहीं न्यूनातिरता। मैं जिंदा रहूं तो कोई अधिक काम करूंगा, और मेरा प्राण छूट जाएगा तो मेरा काम कम हो जाएगा, ऐसा न्यूनाधिकपणा नहीं है। ये संभाव की पराकाष्ठा की गाथा है कि जीवन के जीवित के मरण में न्यूनाधिकता जिसको नहीं है, अरे भव मोक्ष में भी जिसको संभाव रखता है, अवस्था में भव हो मोक्ष हो मेरे क्या, अब मेरे कब्जे में मेरा परिपूर्ण परमात्मा है, मैं ही खुद परमात्मा हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ अवस्था में कमी बैसी होती है वो अल्पकाल के लिए ये अस्थिरता है, अब कुछ लंबी रहने वाली नहीं है, फिर भी इस पर मेरा वजन नहीं है। ये अल्पकाल रहने वाली है और अल्पकाल में पूर्ण हो जाऊंगा, इस पर भी इतना वजन नहीं है, ये गौण है। ऐसा त्रिकाल सदृश एक रूप स्वरूप में एकत्व से संभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए सोना हो या तिनका दोनों समान है, ये भी संभाव का ही दृष्टांत है। सोना हो या मिट्टी हो, शत्रु हो या मित्र हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, जीवितपना हो या मरण की दशा आए, प्राण त्याग हो या प्राण का संयोग हो, प्राण का संयोग को जीवन कहते हैं, प्राण का त्याग को वियोग को मरण कहते हैं, और भव हो या मोक्ष हो, ये सब द्वंद से पार हो गए हैं, निर्द्वंद हो गए हैं। जैसे निर्माणता है ऐसा निर्द्वंदपना भी है, दोपना नहीं रहा, एक रूप स्वरूप में अद्वैत स्वरूप में द्वैतपना नहीं, द्वंद्वपना नहीं, दोपना नहीं, निर्द्वंद्व है दिया। सब समान है, समान है मैंने किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, सोना को सोना जानते हैं, मिट्टी को मिट्टी जानते हैं, मिट्टी को सोना नहीं जानते, सोना को मिट्टी नहीं जानते, फिर भी न सोने के प्रति राग है न मिट्टी के प्रति द्वेष। ऐसा है क्योंकि ऐसा अपना मात्र ज्ञान स्वरूप में स्थिरीभूत हो गए हैं, एकदम स्थिर हो गए हैं, संभाव में स्थिर है, विषम भाव जिसको पैदा नहीं होता है ऐसा संभाव हो गया है। राग और द्वेष विषम भाव है, ऐसे विषम भाव में वो आते नहीं, वितराग दशा, प्रचुर वितराग दशा, उस दशा में वो झूमते हैं, मालते हैं, विहार करते हैं, विचरते हैं। वितराग दशा में विचरना, जंगल में विचरते हैं वो तो एक कहने की बात है, क्योंकि लोगों की तरह वो शहर में गांव में नहीं रहते, लेकिन असल में तो ये अपने वितराग भाव में विचरते हैं, इसमें रमणता है। सोना हो या तिनका दोनों समान है, ये भावना का विषय है, भूमि दशा है वो भावना का विषय होता है। चाहे जैसे संयोग हो, किसी भी प्रकार के संयोग, ये तो शुरू से ही जब दीक्षा काल में प्रतिज्ञा ली है तभी से ये बात हो गई है कि कैसे भी प्रसंग हो, कैसे भी संयोग हो, कैसा भी वियोग हो, कुछ भी हो, मैं अकेला हूँ, मेरे किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, भिन्न हूँ, मैंने सर्वथा भिन्न हूँ, देह पर से भी लक्ष्य छूट गया है, इसलिए तो नियम सार में लिया है तो जिसको पांच इंद्रियों का उपयोग ही नहीं है, इतना ऊपर ऊपर से उपयोग जाता है कि जैसे उपयोग है ही नहीं, अंदर चैतन गोला में उपयोग रमण कर रहा है, नजदीक में शरीर है वहां भी उसका उपयोग नहीं जाता है कि नहीं है, भूल जाते हैं। चाहे जैसा संयोग हो, अनुकूलता में आकर्षित नहीं होते, प्रतिकूलता में खेद नहीं करते, न अनुकूलता का बिल्कुल आकर्षण होता है कि ये ठीक है, भूख लगी थी, आहार का विकल्प हुआ था, अच्छा हुआ कि आहार मिल गया, ये नहीं। अगर 46 दोष में से कोई भी दोष नजर आवे या किसी एक दोष की शंका हो जाए, दोष हो रहे नहीं सामने वाले का लेकिन शंका हो जाए, ये घर में है तो दो ही आदमी, पति पत्नी दो ही है, इतना रसोई का सामान कैसे है, वाकई उसने तो कोई मेहमान आए हुए या कोई ऐसा ही, तो किसी की खुराक भी ज्यादा हो सकती है, जिसको चावल इतना चाहिए, इसको मिठाई इतनी चाहिए, इसको इतनी चाहिए, इसको इतना ही चावल चाहिए, तो ये शंका हो जाए पुतले, वे अनुद्देशिक, अनुद्देशिक होते हुए भी एक दोष की शंका हो गई तो उनको मुनिराज को वैराग्य हो जाता है कि चलो अपने तो अपने स्वरूप में ठीक है, ये आहार नहीं मिला तो ये अच्छा नहीं हुआ, उपवास हो जाएगा, ऐसा द्वेष नहीं, उनको तो यही भला कि चलो अपने तो अपने स्वरूप में ही ठीक है, कोई ऐसा जोगी नहीं है तो अपने स्वरूप में लीन हो जा बस। ऐसे अनुकूलता में आकर्षित नहीं होते, प्रतिकूलता में खेद नहीं, बस उसका खेद द्वेष नहीं आता, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या मुनि को कैसे आहार देना वो उसको पता नहीं है क्या, ये विकल्प उनको आता नहीं। ज्यों ज्यों आगे बढ़े त्यों त्यों समरस भाव विशेष विशेष प्रकट होता जाता है, ज्यों ज्यों आगे बढ़े मैंने जैसे जैसे काल व्यतीत होता जाता है मुनि दशा में, बाहर से ऐसा लगता है कि जहाँ तक श्रेणी नहीं शुरू की, आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में नहीं पहुँचे, वहाँ तक मुनिराज को छठा सातवां गुण स्थान है, फिर भी उसी गुण स्थान में वो आगे बढ़ते जाते हैं, ये भी एक बोला ही जाता है, बाहर से तो ऐसा ही कि मुनि छठे सातवें, लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे काल व्यतीत होता है, निर्जरा बढ़ती जाती है, निर्जरा बढ़ती है इसका मतलब भाव में शुद्धि विशेष बढ़ती है और वितरागता बढ़ती है, वितराग विज्ञान घन होते जाते हैं, ज्ञान घन होते जाते हैं, आनंद घन होते जाते हैं, ऐसे मुनिराज की जो समरस भाव है, समरस मैंने वितराग भाव, समभाव विषम भाव से विरुद्ध भाव, विशेष विशेष मैंने अधिक अधिक रूप से बढ़ता जाता है, ऐसी मुनि दशा को भावना में लेते हुए धन्य मुनि दशा कहने में आती है, तो धन्य मुनि दशा कहते हैं इसको। इस ग्रंथ में से तो मुनिराज के महिमा और भक्ति के विषय बहुत से बोल हैं, उनको अलग छांट करके एक पुस्तिका बनी है अपने यहाँ, इसका नाम रखा है धन्य मुनि दशा। निव्यास बोल में
भगवान मुनिराज का भावलिंग का ऐसा स्वरूप है, उसका मूल कहाँ से?
इसका मूल है अपना मूल स्वरूप, अपना परमात्म पद है, उसको मीटलाई के बैठ गए हैं, मीट करके मीटा करके क्या बोलते हैं, लपेट करके बैठ गए, परिपूर्ण वितराग स्वरूप परमात्मा पद पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद पूर्ण सुख बेहद स्वभाव का कोई ऐसा घनिष्ठ पदार्थ है कि जिसकी ताकत का कोई माप नहीं है। उपयोग जाते ही उपयोग जिसमें थंब जाता है, ऐसा कोई विशेष स्वभाव है कि उपयोग जाते ही उपयोग जिसमें थंब जाता है। ये इसका मूल है। अच्छी है वो तो दोनों की अपेक्षा में, आपस की अपेक्षा में, लगन लेकिन अवस्था की उपेक्षा और अपने स्वरूप की अपेक्षा में दोनों समान है। जैसे पुण्य और पाप, पाप से तो पुण्य अच्छा ही है, मामूली आदमी भी जानता है। अगर मामूली आदमी इतना जानता है कि पाप से पुण्य अच्छा है, तो तत्वज्ञानी नहीं जानता क्या?
जानता।
तो तत्वज्ञानी तो ये कहते हैं, तत्वरसिक विरल जीव तो ऐसे कहते हैं कि दोनों समान है। तो जब ये दोनों समान है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इससे कोई भिन्न अवस्था है संभाव रूप, इसमें ये दोनों समान है। ये संभाव अवस्था को निर्द्वंद अवस्था कही है, जो कहीं दोपणा नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, इष्ट अनिष्ट नहीं करते। तो कहाँ तक इष्ट अनिष्ट नहीं करते? कि पुण्य पाप में तो इष्ट अनिष्ट नहीं करते, इनके फल रूप अनुकूलता प्रतिकूलता में इष्ट अनिष्ट नहीं करते, लेकिन वर्तमान भव मोक्ष में भी इष्ट अनिष्ट नहीं करते। सुगर जी ने तो वहां तक लिखा कि अवस्था में निगोद के भव हो या सिद्ध के भव, सिद्ध पद के व्यक्त दशा हो, मेरे क्या
है?
मैं तो जो हूं सो हूं, जैसा हूं वैसा हूं, बस मैं मेरे स्वरूप में से बिल्कुल विचलित हुआ ही नहीं, अस्खलित स्वभाव में अस्खलित रूप रहता हूं, यही मेरा स्वस्थान है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरे दृष्टि का विषय है, यही मेरे ज्ञान का विषय है, यही मेरे चारित्र का रमण का रमणता का विषय है, सभी गुणों का मेरा यही परिणमन का विषय है। इसमें सभी प्रकार की अवस्था गौण है, गौण है ये बताने के लिए। गौणता में विषमता नहीं होती, जिसकी गौणता होती है उसकी विषमता नहीं होती। न फायदा है न नुकसान है, हार मिलने से न कोई फायदा है, नहीं मिलने से कोई नुकसान नहीं है। वो अपनी आत्मा को अनाहारक स्वभावी जानते हैं, मानते हैं और उसी में रमणता करते हैं, फिर भी परिपूर्ण वितराग दशा नहीं होने से बाह्य चारित्र और बाह्य संयम वहन के हेतु, चारित्र वहन के हेतु, संयम के पालन के हेतु थोड़ा आहार का विकल्प उठता है, वो भी संजलन कषाय रूप मंद भाव है। अगर 46 देश में दो दोष में से एक दोष का पता चल जाए तो उसका ये जो विकल्प है वो शांत हो जाता है। ये विकल्प सिद्ध नहीं होता, इसलिए अशांत नहीं होते वो, कि आहार का विकल्प सिद्ध नहीं हुआ, विकल्प अनुसार प्रक्रिया नहीं हुई, तो अशांत नहीं होते, तो अधिक शांत हो जाते हैं। कभी कभी तो दिन पर दिन भगवान ऋषभदेव स्वामी 6 महीने तक लगातार आते रहे नगर में, एक दिन भी उनको द्वेष नहीं आया। एक करोड़ा करोड़ी पूर्व के पहले का इतिहास को बराबर कह सकते हैं कि एक दिन भी वहां उनको उसको द्वेष नहीं आया था। 6 महीने तक नगर में आए, वापस गए, नान ध्यान में लीन हो, 6-6 महीने तक एक दिन भी अशांत नहीं। शांत हो गए तो मुनि दशा नहीं रहती, कषाय बढ़ जाता है, इतना नहीं मुनि दशा में नहीं बढ़े। अपने आहार के विषय में इतना नहीं कसाई बढ़े, फिर दूसरे विषय में कसाई कैसे बढ़े? रजुणा लेके मारे वो बात नहीं है इधर। अभी तो गड़बड़ी यहाँ तक अपने आहार छूट जाए, कोई सवाल नहीं। आनंद का आहार लेने लग जाते हैं, आनंद अमृत का भोजन लेते हैं और उस भोजन में अपनी आत्मा तृप्त तृप्त हो जाती है, अत्यंत तृप्त हो जाते हैं। ये हुई मुनि भगवान की भक्ति की बात है, भक्ति का ये विषय है। आगे कहते हैं कि संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से हे दुखित मुसाफिर, जीव को मुसाफिर कहा है, वो तो मुसाफिर करते ही रहता है चारों गतियों में और तीन लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में बहुत लंबी मुसाफरी करता है, लंबी ट्रैवलिंग करता है। यहाँ तो 1,000-2,000 माइल का या 10-20,000 माइल की मुसाफरी कर सकता है, दुनिया का छेड़ा आ जाता है। लेकिन असंख्य योजन में जाता है, कभी कहाँ, कभी निगोद में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी मध्य में, कहाँ का कहाँ। क्यों? कि संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से वो दुखी है। ये चाहिए, वो चाहिए, संसार का ये पदार्थ चाहिए, संसार का वो पदार्थ चाहिए। उपयोग भ्रमण करता है, भाव उसका भ्रमण करता है, भाव भ्रमण का फल मिलता है द्रव्य भ्रमण। भाव भ्रमण का फल मिलता है क्या? द्रव्य भ्रमण। देखा था ना वो होगा चौमासे में बत्ती के जो जीव हैं, रोड लाइट इतने तेजी से घूमते हैं कि एक जो वो कीड़ा है, पांख वाला कीड़ा होता है, वो एक पांख वाले पर अपना नजर नहीं लगा रख सके, इतना झड़प से वो घूमता है। क्यों इतना झड़प से? कि इतना तेजी से उसने भाव घुमाया है, उपयोग की चंचलता, ये रूप का आकर्षण है। तो रूप को देखने में इतना तेजी से उपयोग घुमाया है, फिर वो कीड़ा बनता है। प्रकाश का, प्रकाश को देखकर झपट लगाता है, जोर जोर से झपट लगता है। कहाँ तक लगाता है? कि मरता नहीं है वहां तक। सुबह सुबह देखो तुम, हजारों सैकड़ों हजारों नीचे गिरे हुए दिखने में आते हैं, मरे हुए। भाव भ्रमण का फल है द्रव्य भ्रमण। संसार के पदार्थ के, अनेक पदार्थ की अभिलाषा रूप भूख है, एक अभिलाषा रूप अग्नि है, क्षुधा में अग्नि है ना, इसको जठराग्नि बोलते हैं। ये भी एक अग्नि है जिसका दाह होता है, शांत स्वरूप जीव को दाह होता है। राग आग दहे सदा तांते समामृत से ही वो दाह होता है जीव को। जैसे सुखशुदा का दाह होता है, वैसे राग का दाह होता है। संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से ये दुखित मुसाफिर, तू विषयों के लिए क्यों तरसता है? प्रश्न पूछते हैं ज्ञानी, के विषयों के लिए तू तरसता है जैसे किसी को प्यास लगती है, और पानी के लिए छटपटाट चलती है, पानी नहीं मिले तो तड़फड़ता है, वैसे बाह्य पदार्थ नहीं मिलता है तो चपट करता है, जावा नाचता है, अनेक प्रकार के सभी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं को गौण करके इच्छित पदार्थ को, अभिलाषित पदार्थ को पाने के लिए तरसता है जी। उनको सत्पुरुष पूछते हैं कि तू क्यों तरसता, वहां तेरी भूख शांत नहीं होगी, इसलिए प्रश्न पूछा कि तू तरसता है, चेष्टा करता है, प्रयास करता है, लेकिन तेरी भूख तो शांत होने वाली नहीं है। जिस प्रयास से तुझे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा उल्टा प्रयास तू क्यों करता है। कोई ये कहते हैं कि हम इच्छित पदार्थ को जुटा लेते हैं, मैंने उसको पा लेते हैं तो हमको ठीक लगता है, फिर भी हाँ ये भूख शांत नहीं है। ये एक ऐसी भूख है कि जैसे अग्नि में कोई घी डालता है तो अधिक तेज हो जाती है, वैसे ही एक क्षुधा अधिक तेज होती है। एक क्षुधा तो टेम्पररी शांत हो जाती है, जठराग्नि वाली जो क्षुधा है उसमें कुछ रोटी दाल भात डाल देते हैं तो थोड़ी देर शांत हो जाती है, 4-6 घंटे के लिए, लेकिन ये तो शांत होती नहीं। ये तो एक विकल्प शांत हुआ कि दूसरा विकल्प चल गया, पैदा हो गया। इसको शांति से भोगा नहीं भोगा, दूसरा पदार्थ की अभिलाषा खड़ी हो जाती है और वो शांति बढ़ती जाती है। यहाँ तो बात दूसरी बतानी है कि बाह्य पदार्थ की अनादि से तुझे अभिलाषा हुई, बाह्य पदार्थ की अभिलाषा अग्नि से अनंत काल से तुझे अशांति हो रही है, अब इनकी शांति के लिए एक रास्ता है, एक उपाय है, एक मार्ग है, ये बात यहाँ करनी है। अंतर में अमृत फलों का चैतन्य वृक्ष लगा है, कुछ बहन सी की विशिष्टता है कि आत्मा के स्वरूप के विषय में बहुत से मीठे शब्दों से ये विषय को व्यक्त कर सकते हैं। कहते हैं कि तुझे बाहर के फलों से या बाहर के विषयों से तेरी विषय की भूख शांत नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, शांत तो नहीं होगी वरन बढ़ती जाएगी, ये तो। और इसको शांत करने का एकमात्र उपाय है कि आत्मा में जो आनंद अमृत है उसका भोजन लेने से, इधर तो चैतन्य वृक्ष आनंद अमृत वृक्ष की, अमृत के फलों का वृक्ष की उपमा, जैसे आम का पेड़ होता है, अच्छी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की आम बनती है, खाते होते हैं वहाँ, तो अमृत जैसा आम है, ये अमृत नहीं है। उसका आनंद लेने में तो दुख है, मानते हैं भले ही सुख, लेकिन सुख है नहीं, असल में वहाँ भी आकुलता है। इच्छा का जो अग्नि है उसको शांत करने के लिए आनंद की वर्षा, अंतर आनंद की वर्षा एक ही समर्थ है, वहां तक कभी शांति नहीं होती, किसी को कभी शांति नहीं होती इन काल में। इसके पीछे ये अभिप्राय है, लेकिन जीव को स्वयं के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि मुझे तो अशांति हो ही रही है, अब जहां तक मैं मेरे आनंद का अनुभव नहीं करूंगा, अंतर आनंद का अनुभव नहीं करूंगा, वहां तक ये अशांति का अग्नि कभी शांति नहीं होगा। और ऐसे अशांति कहां तक भोगनी है इसका विचार कर लेना चाहिए।
अनंत सुख निधान में स्वरूप भावना ने करता है, अविनाशी रस उपजे स्वरूपनी भावनामां रस घुटाय छे, रस तीव्र थाय छे, रस न उपजतो होय ने उपजे, उपजो होय ने रस तीव्र थाय। अने मोक्ष मार्गना संतो ए रसने सेवता आव्या छे, जेने आत्मरसने ब्रह्मरसने शांतरसने सेवो ते संतो छे। बाकी वेशधारी छे बधा संतो छे एम छे नहीं, एनी मतमां तो कोई सामान्य बावानो वेश धारे तो संत महात्मा छे एम कहेवाय, एने जमाडे तो भाई संतने जमाड्या एम कहेवाय। पछी तो गमे ते माणसो वेश धारण करे छे, ગમે એવા માણસો હોય છે પણ એ પદ્ધતિ થઈ ગઈ છે, પણ એ રૂઢિ છે બોલવાની। ખરેખર તો મારો વિષય આવશે, આમાં ફરી ફરીને હવે એ વિષય આવશે ભાવનાનો, અહીંથી શરૂઆત થઈ છે, ફરી ફરી મળીએ છીએ। તેને તું પણ સેવ એવા અવિનાશી રસને તું પણ
સેવ
એવા આત્મરસનું તું સેવન કર, અથવા તું આત્મરસમાં રહે અનાત્મરસમાં તું ન રહે, પરિણામમાં રસ તો રહેવાનો છે, અનાત્મરસમાં રાગ રસમાં પુદગળ રસમાં રહેતા તને દુઃખ થશે, અને સુખ નિધાન અનંત સુખ નિધાન એવા આત્માના રસમાં આવતા તને સુખ થશે। બસ સુખ અને દુઃખ થવાનો આ સિદ્ધાંત છે, અનાદિ અનંત આ સુખ દુઃખ થવાનો સિદ્ધાંત છે। જગતમાં જીવો સુખની સમસ્યા ઉકેલી નથી શક્યા, જગતના જીવો સુખ માટે અનાદિથી ધમપછા
અનંત કાળ ગયા, અભી ભી જ્યાં તક નહીં સમજે, જ્યાં તક અંતર્મુખ નહીં હોવે, કિસકો માલુમ અનંત કાળ કિતના જાયગા, કિતના અનંત કાળ જાયગા, અનંત કાળ મે ભી કિતના અનંત કાળ જાયગા, કિસકો માલુમ। અબ ઇસ દુઃખ ઇસકા દુઃખ લગા હો, અરે ઇસકા દુઃખ જ્ઞાન મેં ભાષિત હોતા હો, સમજ મેં ભાષિત હોતા હો, તો સહી રાસ્તા કો ઢૂંઢે ઓર સહી ઉપાય કો કરે, એકી બાત હૈ। યે તો કહેતે હૈ કે અંતર મેં અમૃત ફલોં કા ચૈતન વૃક્ષ લગા હૈ, તુજે ઇસ વૃક્ષ કો લગાના નહીં હૈ, લગા હુઆ હૈ, દેખતા નહીં હૈ તો દિખતા નહીં હૈ, એક ચીજ હૈ તો દેખને વાલે કહેતે હૈ કે હૈ, એક આદમી કહેતા હૈ કે નહીં દિખતા હૈ, તો કહેતે તું દેખતા નહીં હૈ તો નહીં દિખતા હૈ, તુમકો ક્યાં દિખતા હૈ કે હૈ, હૈ ઇસલિયે દિખતા હૈ, બસ ઇતના સવાલ હૈ। દેખને કે લિયે જીતના પ્રયત્ન, એક લડકે કો દેખો પાંચ तीन साल का, अभी तो तीन चार साल का होता है, उसको केजी में हो, क्रीडांगण में, बाल मंदिर में भेजते हैं, वहाँ से लेकर के फिर स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर वो एक ग्रेजुएट होता है तो एक क्लार्क के काबिल होता है, क्लार्क का काम कर सके इतनी सारी क्षमता। अभी जो अंडर जो ग्रेजुएट है बैचलर होता है उसको वहाँ तक कक्षा है, इसकी योग्यता है, इसके आगे बढ़े, कितनी साल जाती है, कोई 20 साल में होता है, 18-20 साल में, तो 15 साल हो गए। इससे आगे बढ़ने के लिए हायर टेक्निकल डिग्री लेने के लिए और 2-4-5 साल निकालना पड़ता है, डॉक्टरेट होता है तो 25 साल का आदमी हो जाता है, 23 साल 25 साल 27 साल। एक पेट भरने के लिए 20-25 साल का परिश्रम करना पड़ता है संसार में जीव को। कितना पीरियड है, 1 generation pass, एक पीढ़ी का ये पीरियड बोला जाता है इसका। पेट भरने के लिए इतना करना पड़ता है, अनंत काल का सुख भोगने के लिए क्या क्या किया तुमने, कितना परिश्रम किया। जिस देह के लिए इतना परिश्रम, तो सत्पुरुष कहते हैं कि देह की जितनी दरकार की तूने, इससे अनंत गुणी दरकार आत्मा की कर, करनी चाहिए। अनंत काल, अनंत परिश्रम, अनंत दरकार, अनंत सावधानी देह के लिए किया, अब इससे अनंत गुणी आत्मा के लिए कर। भाव से समय की जो इतनी जरूरत नहीं है, समय की इतना समय नहीं लगता है, वस्तु में ताकत इतनी है कि वो उतना वो समय नहीं लगता है काम करने, इसका ताकत का कारण है। लेकिन भाव तो प्रचुर से जोर से उठनी चाहिए। जगत इष्ट नहीं आत्म से, सारे जगत को एक लात मार के उड़ा देने, कोई जगत की मुझे परवाह नहीं है, मैं मेरा काम पहले करूँगा, मेरे काम के मेरे कार्य करने में जगत के कोई पदार्थ बीच में आवे बहुत बाधा करे, मैं उसको फेंक दूंगा, मेरा काम पहला है, ऐसा जोर से बात आनी चाहिए। सुगानु जी कहते हैं कि तराजू के एक पल्ले में 3 काल 3 लोक और एक पल्ले में मेरा परमात्मा, मेरी आत्मा, मैं, मेरा पल्ला बैठ जाता है, ये पल्ला उधर जाता है, ऊंचा हो जाता है, नहीं ये पल्ला को तो मैं फेंक देता हूँ, इतना मेरा मेरे पर वजन है, तब काम होता है। काम जब होता है कि इतना वजन आता है, तब
इतना मान मैं हूँ
और इतना मेरा कार्य का मेरे लिए, मेरा कार्य का इतना प्रायोरिटी है, इतनी मुख्यता है, इतनी विशेषता है और सब गौण है। यहाँ तो कहते हैं कि अंतर में अमृत फलों का चैतन्य वृक्ष लगा है, उसे देख तो अनेक प्रकार के मधुर फल एवं रस तुझे प्राप्त होंगे। देखने मात्र से, जैसे कहते हैं कि कोई प्रियजन का 25-25 साल का वियोग होता है तो देखते ही आनंद विभोर हो जाते हैं, मिलने पर ही आनंद विभोर हो जाते हैं। अभी तो दूर से देखें तो भी आनंद विभोर हो जाए। तो ये तो अनंत आनंद से लबालब भरा हुआ पदार्थ अवस्था, उसके सन्मुख होकर देखते से अवस्था में इतना आनंद छा जाता है कि जैसे आनंद समाता नहीं है। भागचंद जी का पद है, घट अंतर समाय, घट मैंने अंतर्मुख होने वाली पर्याय, अंतर में होने वाली जो पर्याय उसमें वो आनंद समाता नहीं है, इतना उभर कर इसमें भाव आता है। कि ऐसा रस तुझे, आनंद रस तुझे प्राप्त होंगे, शांत रस प्राप्त होगा, ज्ञान रस प्राप्त होगा और तो तृप्त तृप्त हो जाएगा, वास्तविक तृप्ति वहां आएगी। गुणस्थान अनुसार जितना साधक भाव सिद्ध होता है, सिद्ध मैंने प्राप्त होता है, उतनी तृप्ति बनती है। लेकिन तृप्ति की जो जात है वो परिपूर्ण तृप्ति है, उसकी जात है। तारतम्यता हीनाधिक होती है, लेकिन तृप्ति तृप्ति ही होती है, तृप्ति में अतृप्ति नहीं होती। जैसे वितरागता है वो जघन्य वितरागता, मध्यम वितरागता, उत्कृष्ट वितरागता कह सकते हैं, तारतम्य भेद, फिर भी वितरागता में राग नहीं है। शुद्धि में जघन्य शुद्धि, मध्यम शुद्धि, उत्कृष्ट शुद्धि कह सकते हैं, लेकिन शुद्धि में अशुद्धि नहीं है। जैसे थोड़ा नफा है लेकिन नुकसान उसमें नहीं है, नफा सो नफा ही है और नुकसान है उसमें नफा नहीं है, है ना, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। वैसे तृप्ति में तृप्ति है, तृप्ति में अतृप्ति नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में तृप्ति होवे, शुद्धोपयोग होते ही तृप्ति होवे, तो उसमें तृप्ति ही होती है, उसमें अतृप्ति नहीं होती। कहते हैं कि तू तृप्त तृप्त हो जाए, इसलिए कहते हैं। कोई ये कहेंगे कि अभी तो चतुर्थ गुण स्थान होगा और परिपूर्ण तृप्ति तो वितराग पद में, बारहवें गुण स्थान में, तेरहवें गुण स्थान में, यानी अभी से तो तृप्त हो जाएगा। और चौदह गुण स्थान के पार जो पदार्थ है उसका तुझे स्वयं के रूप में अनुभव होगा, इसमें अतृप्ति का कहां सवाल है। तेरहवां चौदहवां गुण स्थान में तृप्ति पूर्ण होती है सिद्ध दशा में, या तो कहते चौदह गुण स्थान से पार तेरा स्वरूप है, उसका अपने रूप अनुभव होता है, तो उसमें अतृप्ति कैसे, उसमें अतृप्ति होने का सवाल है। ऐसा हो जाएगा। सर्वोत्कृष्ट महान पदार्थ अपने लिए, तो दूसरे सब पदार्थ निकम्मे हैं, किसी भी काम के नहीं। संसार से विमुख होकर के अपने स्वयं के हित में शामिल होने की एक प्रेरणा है, सतपुरुष के वचनों में एक प्रेरणा है कि संसार का दुख तूने बहुत भोगा, अगर तुझको तुझे दुख से छुटकर सुख में आना हो तो अंतर में अमृत फल का चैतन्य वृक्ष लग गया है, लगा हुआ ही है, अनादि से तैयार है, पका पकाया फल है। ऐसा भी नहीं है कि पानी खाद लगाओ सिंचन करो और फिर फल पकेगा जब खाएंगे, पका पकाया तैयार है अमृत फल। अपनी आलस से वो विमुख रहता है, सन्मुख होते ही बात खत्म। व्यवहार से मंगल है वो तो आगे, वो निश्चय से तो अपनी आत्मा परम मंगल है, स्वयं की आत्मा परम मंगल है, इसके आगे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय अपरम मंगल है, परम मंगल नहीं है, अपरम है। ऐसी बात है, गुरुदेव के प्रवचन में इससे आगे भी जाते हैं कि अपना त्रिकाली परमात्मा परम भाव है और इसके आगे सिद्ध दशा रूप परिपूर्ण शुद्ध दशा अपरम भाव है, अपरम भाव है। तो दूसरा सिद्ध की तो कहना ही क्या है। स्वयं की सिद्ध दशा की बात है, अभी तो हुई नहीं, कहने वाले को तो अभी हुई नहीं, क्योंकि हुए तो, जो जिसको होती है वो तो कहते नहीं, उसकी तो भाषा रहती नहीं, वो तो अधेय ही है, उसको मदमचन काया का संजोग नहीं है, वो तो अशरीर होते हैं, तो उसको तो वाणी नहीं होती कि वो कहें कि सिद्ध दशा से भी ये आत्मा परमोत्कृष्ट है। लेकिन जहाँ तक वाणी होती है, अरहंत आदि मुनिराज सत्पुरुष ये सिद्ध दशा नहीं हुई है जिसको, वो कहते हैं कि ये परम भाव के आगे एक समय की सिद्ध दशा अपरम भाव, होने वाली सिद्ध दशा अपरम भाव, ऐसा जिनका सर्वोत्कृष्ट स्थान है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थान है, वो स्वयं का निज आत्म पद है। जे स्वरूप समझा बिना पायमो दुख आनंद, हा ये स्वरूप निवास है।
सही स्वरूप था वो कहाँ गया हो?
गया ही नहीं, हाँ गया ही नहीं, इधर ही है, किधर भी नहीं। मैं तो अब भी सीध हूँ, ठीक, कपड़ा पहने हैं, अभी तो कपड़े भी पहने हुए हैं, दिगंबर दशा भी नहीं आई शरीर की। कहते कि मैं तो अभी सीध हूँ, इसके पहले 14वां गुणस्थान होगा अवस्था में, उन्हीं दशा की तो बात ही नहीं करते। सिद्ध पद आने के पहले 14वां गुणस्थान होगा और फिर बाद में सिद्धालय में जाना होगा, अयोगी केवली दशा, संयोगी केवली तक की बात नहीं लिया, मुनि दशा की बात नहीं लिया, संयोगी केवली की बात नहीं लिया, अरण दशा के अयोगी केवली की बात नहीं, क्योंकि सिद्ध दशा की बात करना है ना, तो इसके पहले तो 14वां गुणस्थान होगा, फिर सिद्धालय में जाना होगा, निश्चित है, अपनी प्रतीत में वो बात निश्चित है कि अभी तो सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन 14वें गुणस्थान होगा, होगा ही होगा, बाद में सिद्धालय में जाना होगा, क्षेत्रांतर हो जाएगा, मैंने ये मनुष्य लोक में से सिद्ध शिला तक जाना होगा, इतना सिद्ध एक समय में इतनी मुसाफरी ट्रैवलिंग हो जाएगी, बिना साधन, न मोटर चाहिए, न प्लेन चाहिए, न कोई जहाज चाहिए, न हवाई जहाज चाहिए, कुछ नहीं, एक समय में क्षेत्रांतर वगैरह होगा, लेकिन ये सब कार्य पर्याय में होगा। ये सब कार्य किस में होगा? मेरे त्रिकाली में नहीं, इसका मतलब ये पर्याय में होगा, मेरे में नहीं, लेकिन ये सब कार्य पर्याय में होगा, पर्याय का कार्य पर्याय में होता है, होगा तब होगा, होता है तो होता है, मेरे में नहीं। मैं तो अभी सिद्धालय में ही बैठा हूँ, मैं अभी सिद्ध हूँ और मेरे सिद्धालय में बैठा हूँ, वो सिद्धालय दूसरा सिद्धालय है, मैं तो अभी सिद्ध हूँ, सिद्ध स्थान में बैठा हूँ, आलय मैंने स्थान, जिनालय बोलते हैं, महालय बोलते हैं, महल को महालय बोलते हैं, जिन बैठते हैं उसको जिनालय कहते हैं, सिद्ध विराजमान होते हैं उसको सिद्धालय कहते हैं, तो कहते हैं कि मेरा सिद्धालय में तो असंख्य क्षेत्र का मेरा सिद्धालय है, ये मेरा सिद्धालय तो असंख्य क्षेत्र का अनादि अनंत है, उसमें कोई इस क्षेत्र में कोई फेरफार होता नहीं। अभी सिद्धालय में ही बैठा हूँ, कभी कहीं आया भी नहीं, मेरे सिद्धालय में से मैं कभी कहीं गया भी नहीं, नहीं कभी कहीं आया ही। ऐसी सिद्ध स्वरूप अपना जो आत्मा है, ऐसी उनकी भावना होती, भावना इसलिए उसको कहते हैं कि इसके सन्मुखता का और इस रूप अनुभव का, इस रूप अभेद अनुभूति का प्रयत्न मौजूद है, इसलिए ऐसी निज पद की ये भावना है उसको आत्म भावना कहते हैं। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। सारे शास्त्रों में, पूरे के पूरे सब शास्त्रों में यही एक बात कहने का मकसद है, कहने वालों का यही एक अभिधेय है। और भगवान की दिव्य ध्वनि में भी यही एक बात की मुख्यता रही है। तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि में, सभी तीर्थंकरों के, अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में यही एक आत्मस्वरूप की बात मुख्य रही। बार बार हम तुझे तेरा निज पद को दर्शाते हैं, ये भी इच्छा नहीं है। भगवान को तो इच्छा पूर्वक वाणी नहीं होती, लेकिन पूर्व कर्म का फल रूप वाणी स्वयं भाषा वर्गणा रूप होकर पूर्व के द्रव कर्म के अनुकूल नो कर्म रूप बन जाती है। तो इसमें यही बात आती है, खुद तो वितराग बन गए हैं, खुद को तो न लेना है न कुछ देना है, न उपदेश देना है न कुछ सुनने वालों से कुछ लेना है। इक्यानवे नंबर का बोल है वो, फिर मुनि दशा का बोल है। हाँ, आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है, जिसका अवलोकन करने से मुनियों को वैराग्य उछल पड़ता है। बोल छोटा होता है, भाव कितने भरे हैं। कहते हैं कि ये तो अलौकिक चैतन्य चंद्र है। जैसे उपमा लेवे, चंद्र की उपमा दिया, तो पूर्णमास का जो चंद्र है, पूर्णमास मास पूरा होता है, वहाँ गुजराती में थोड़ा उल्टा है, हिंदुस्तान में तो पूनम को पूर्णमास होता है और अमास में अर्धमास होता है, अर्धमास को अमास कहते हैं। तो पूर्णमास का चंद्र उदित होता है तो समुद्र उछलता है। समुद्र उछलता है कि नहीं उछलता है? तो यहाँ कहते हैं कि मुनिराज को वैराग का समुद्र उछलता है, वितरागता का समुद्र उछलता है। आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है, लौकिक में जिसकी उपमा नहीं दे सकते, लोक में जिसकी बराबरी का कोई पदार्थ नहीं होने से जिसकी उपमा लागू नहीं कर सकते, ऐसा आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है, जिसका अवलोकन करने से, अवलोकन मात्र से क्षण में उपयोग अंतर में जाता है मुनिराज का, वैराग उछलता है। असंख्य प्रदेश में, प्रदेश प्रदेश में वितरागता उछल पड़ती है।
मुनियों की बात चली, मेरे क्या था?
मुनियों के हमारे ऐसे होने की भावना, हमने भावना की बात है। अमेरिका की संपत्ति अमेरिका में है, अभी यहाँ इसकी बात क्यों लोग करते हैं? ऐसी लंबी लंबी मोटर होती है,
संपत्तिवान होना है
कि तेरी रुचि है वहाँ इस वैभव में, औद्योगिक वैभव में तेरी रुचि है कि इसका बंगला देखा, इसको तो टॉयलेट में एयर कंडीशन रखा है, ठीक ऐसा कहेंगे क्यों भाई? तेरे को तो कुछ है नहीं तेरे पास, लेकिन भावना जिसको होती है उसको ये बात आए बिना रहती नहीं। जैसे भौतिक वैभव की भावना वाले को भौतिक वैभव की संपन्नता नहीं होने पर भी इसकी महिमा रहती है, तो दूसरा का बखान करते हैं। तो अपने मुनि पद नहीं हुए, लेकिन जिसको आत्मिक वैभव पैदा हुआ है तो उसकी महिमा, उसका बखान करते हैं सत्पुरुष। उनको ये भावना है कि मेरी भी ऐसी दशा कब हो, ऐसा अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा मुझे, ऐसी भावना। જંગલ માંથી નગર સુધી આવે અને આહાર ન મળે ને પાછા જાય તો એને આનંદ નો ઉભરો આવે એ સમજાય એવું નથી, કેમ કે અહીંયા પોતાનો અભ્યાસ એવો છે કે ઈચ્છિત પદાર્થ ન મળે એટલે દ્વેષ થાય, પોતાનું ધૈર્ય ન થાય એટલે દ્વેષ થાય, ઘરમાં એક નાની મોટી વાતમાં પોતાનું ધૈર્ય ન થાય તો દ્વેષ થાય, મેં આમ કીધું તો ન કીધું, મુનિરાજની વાત કીધી છે, અલૌકિક દશા છે, એવી અલૌકિક દશા છે કે દ્વેષનો સવાલ જ નથી, કેમ કે એક ક્ષણમાં અંદરમાં જાય છે, અહીંયા આહારનો વિકલ્પ ચાલે છે તો ચાલતા ચાલતા આનંદમાં અંદર જતા જાય છે, જ્યાં અહીંયા વિકલ્પ આવ્યો કે આહારનો જોગ નથી યોગ નથી સીધા અંદર જાય છે, એ વિકલ્પ છીટો કે સીધા અંદર જાય છે, અંદરમાં સીધો આહાર લઈએ છે, આનંદનો આહાર લઈ લઈએ છે, તૃપ્તિ થાય છે, આત્મા પુષ્ટ થાય છે, ખલાસ વિકલ્પ છૂટો એ છૂટો, પાછો ફરીની વિકલ્પ ઊભો નથી થતો, એક સ્થિર વૈર વિતરાગતાની સ્થિરતા એટલી છે કે આહારનો વિકલ્પ એક વખત છૂટી ગયો કે આહારનો નહીં આજ આહાર લેવાનો નહીં, એટલે બીજા દિવસ સુધી વિકલ્પ ન આવે, પાછો વિકલ્પ આવે જ નહીં, ઊભો જ ન થાય, એવી સિદ્ધિ જોરથી વિતરાગ દશા આવે છે, અહીંયા આહારનો યોગ ન થાય તો બીજાને જોરથી દ્વેષ આવે, અહીંયા જોરથી વિતરાગ દશા એવી આવે કે 24 કલાક સુધી તો બીજો વિકલ્પ આહારનો ઊભો ન થાય, એમ નથી કે ફરીને એક સેકન્ડમાં બે સેકન્ડમાં પાછો આહારનો વિકલ્પ આવે ને પાછા એને દબાવીને જંગલમાં આવી જાય, એમ નથી, 24 કલાક તો એ પ્રશ્ન જ નથી, અંદર એટલો આનંદ નહીં થી શાંતિ, ચૈતન્ય ચૈતન્ય વૃક્ષ અમૃતના ફળનું ચૈતન્ય વૃક્ષ લાગેલું છે, એ ચૈતન્યના અનેક ગુણના અનેક અલૌકિક રસને પીએ છે, જેમ કોઈ હમણાં એપલનો જ્યુસ પીએ ને પછી મેંગો ઘટક ઘટક શેરડીનો રસ પીએ ને કેરીનો રસ પીએ ને રસ ઉપર રસ પીએ, બધા ફળના રસ છે પણ જુદા જુદા રસ કેમ એને મીઠા લાગે, એ તો મીઠાશ કાંઈ નથી, એ તો એની પાસે ઝેર છે એટલી મીઠાશ જેની છે, જેની પાસે આ મીઠાશ ઝેર છે એટલી જેની મીઠાશ છે, એવા વિભિન્ન ગુણોના આત્મરસ પીએ છે, વિકલ્પ ખલાસ થઈ ગયો, ઉત્પન્ન થાય એ પ્રશ્ન નથી, તો મહિનામાં પાંચ મહિનામાં એક વખત આહાર કરે તો વધુ શું એવા રુદ્ધિધારી હોય કે એની વિષ્ઠામાંથી સુગંધ નીકળતી, એના પસીનામાંથી સુગંધ આવે છે ને, ચોસો રુદ્ધિધારીમાં એના શ્વાસોશ્વાસમાંથી સુગંધ, એ તો આ દેવોને હોય છે, દેવોના શરીરમાં સુગંધ હોય છે, દેવોના શરીરમાં દુર્ગંધ હોતી નથી, તો દેવ તો એને વંદન કરે છે, એ બધા દેવો તો એને વંદન કરવા આવે છે, ઉપરથી ઉતરી ઉતરીને આવે છે, હા कहते हैं जिसको अवलोकन करने से मनियों को वैराग्य उछल पड़ता है। मुनि शीतल शीतल चैतन्य चंद्र को निहारते हुए अघाते ही नहीं थकते ही नहीं, अपने गुजराती में कहते धराता नहीं, धराता नहीं यानी थकता नहीं, धराता मैंने तृप्त होना। जैसे भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, सामने देखते ही रहो, वैसे ही अरिहंत भगवान के ऐसा ऐसा प्रतिमा होती है। प्रतिमा क्या, साक्षात जो जिनबिंब है, साक्षात जो जिनबिंब है, समूह शरण में ऐसा है शरीर, आखिर का जो चरम शरीर है परम औदारिक दशा में, कि देखने वाले को उपयोग बदलना नहीं चाह रहे, उपयोग थम बजा रहे हैं। इतना तेजस्वी, इतना शांत, शांत तेज, इतना उपयोग और इतना सब तरह से सुंदर, सब तरह से इतना सुंदर, उपयोग बदलना नहीं चाहे, देखे वो तो देखते ही रहे, बस देखते ही रहे, खाना भी भूल जाए, पीना भी भूल जाए, टट्टी पिशाब भूल जाए, सब भूल जाए, नींद भूल जाए, सब भूल जाए, सब छूट जाए। साक्षात तीर्थंकर जो समोसरण में जाते हैं सब भूल जाता है, समोसरण वाले को ये नींद नहीं आती वहाँ, क्योंकि 24 घंटों में 6 दफे निकलती है, तो वहाँ कोई नींद नहीं लेते, न कोई खाने पीने को जाते, न कोई डटी पे शाम है। नहीं वो तो होने की बात है, तो समोसरण में जवा वाला है, भगवान ना दर्शन करे तो यहाँ उपयोग फिर वो है नहीं तो एवं शांत सौम्य रूप हो।
परम कृपाणु श्रीकांत।